बले पदत्रयम्भूमे कस्माद् हरिर्याचत भूतेश्वरः कृपणवत् लब्धार्थोऽपि वबन्धतम् एतद् वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलम् हिनः याञ्चेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनम् चाप्य नागश। हरे कृष्ण। एक एक श्लोक बले पदत्रयम्भूमे कस्माद् हरिर्याचत भूतेश्वर कृपणवात् लब्धार्थोऽपि भवन्दतम् एतद् वेदितुमिच्छाम महत् कौतूहलम् हिना पञ्चेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनम् चाप्य नागस। परम भूमे कस्माधरिर्याचत भूतेश्वर कृपणवात् लब्धार्थोऽपि वबन्धतम् एतद् वेदितुमिच्छामो माता जी। ठीक है। श्री राजवाच। महाराज परीक्षित ने पूछा, बले बलि महाराज के पदत्रयम् तीन पग, भूमे भूमि के, कस्मात् केव, हरि ही भगवान वामन के रूप में, अयाचत मांगा, भूतेश्वर सारे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपणवात गरीब मनुष्य की तरह, लब्धार्थ दान पाकर, अपि यद्पि बबंध बंदी बना लिए, तम उनको बलि को, एतद यह सब, वेदितुम समझने के लिए, इच्छाम हम इच्छा करते हैं, महत महान, कौतूहलम उत्सुकता, ही निसंदेह, न हमारा, ही आंचा भीख, ईश्वरस्य भगवान की, पूर्णस्य परम पूर्ण, बंधनम बांधते हुए, च भी अपि यद्यपि अनागस निर्दोष को, जय श्री राधे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। श्री भगवान आज के दिन इस जगत में अवतार लिए श्री वामन देव के रूप में। इस कथा को पहले सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में कह चुके हैं, संकेत किए हैं। तो महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि सर्वसमर्थ भगवान परिपूर्ण ईश्वर भीख क्यों मांगे, एक दीनहीन की तरह तीन डेग भूमि की याचना बलि से क्यों किए। और बलि महाराज ने उनको दे दिया, इसके बाद भी उन्होंने बलि को बंधवा क्यों दिया, ये जिज्ञासा है। इसमें एक कौतूहल के साथ आश्चर्य के साथ महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि श्री भगवान, भगवान की विशेषता कहते हैं कि भूतेश्वर है, पूर्ण है, ईश्वर है, इसके बाद भी उन्होंने एक दीनहीन की तरह भीख क्यों मांगी। हरि है, सर्वाकर्षक है, कई विशेषता भगवान के बतलाते हैं, हरि, भूतेश्वर, यांचेश्वर, और पाठ भेद भी है, जगेश्वर भी कहा गया है, कहीं कहीं जगेश्वर है, यांचेश्वर, या पूर्णस्य। तो भगवान की विशेषता समस्त जीवों के ईश्वर है, भूतेश्वर है, और हरि है, सर्वाकर्षक है, और पूर्ण है, समस्त यज्ञों के एकमात्र ईश्वर है। इतने होने के बाद भी उन्होंने कृपणवत, कृपणवत का मतलब एकदम दीनहीन लाचार की तरह उन्होंने मांगा क्यों बलि से। बलि एक साधारण असुर है, उस असुर के सामने भगवान के भीख मांगे, एक आश्चर्य की बात। और मांगने के बाद बलि ने दे दिया, इसके बाद भी उन्होंने उनको बंधवा क्यों लिया, किसको बंधवा लिए, अनागस निरपराधी को। बलि यद्यपि दान देने के कारण अपराधी नहीं थे, जो सामर्थ्य था दे चुके, इसके बाद भी भगवान ने निरपराध बलि को बंधवा क्यों दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, महान कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बताइए क्या कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने 9 अध्यायों में दिया है, 2-4 श्लोकों में नहीं दिया है, 9 अध्याय में। और एक एक श्लोक कहा जाए तो कम से कम 7-9 दिन लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 घंटा के अंदर इन 9 अध्याय को संक्षेप में कहें। आप धैर्य के साथ सुनिए। भगवान का जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, प्राकृत नहीं है, असाधारण है। तो इस जन्म कर्म की विशेषता यह है कि कोई इसके अप्राकृतत्व को, इसकी दिव्यता को ठीक ठीक से समझ जाए, सुन ले, तो फिर से उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, श्री भगवान के धाम में चला जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। नैति मामेति सोऽर्जुन, हे अर्जुन, वह न इति इसमें नहीं आएगा, इस प्राकृत जगत में नहीं आएगा, मेरे पास चला आएगा। तो भगवान के अवतार के महत्वपूर्ण तिथि पर हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। भगवान अवतार लेकर तिथियों को महत्वपूर्ण बना दिए हैं, उनके नाम से तिथियां जानी जाती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ये द्वादशी वामन द्वादशी विजया द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी कुछ दिन पहले बीता, भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी उनके नाम से जानी जाती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री राम अवतार लेकर के अपने नाम से तिथि को रिजर्व कर लिए, श्री रामनवमी, श्री गौर पूर्णिमा, श्री नरसिंह चतुर्दशी। इस प्रकार ये तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस 15वें अध्याय में बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय की कथा है। मैं अति संक्षेप में कहूंगा, धैर्य से सुनिए। देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों में विशाल युद्ध हुआ। यह बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। समस्त वैदिक इतिहास में दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं, देवासुर संग्राम और महाभारत। तो असुरों को अमृत नहीं मिलने के कारण उनका क्रोध बढ़ गया था। ये लोग देवताओं से युद्ध किए, तो उस समय असुरों के लीडर थे बलि महाराज, जिस समय समुद्र मंथन हुआ। तो उस महान समर में, युद्ध में, अंततः असुरों की हार हुई, क्योंकि श्री भगवान स्वयं देवताओं के पक्ष से युद्ध किए। तो उस युद्ध में बलि महाराज को एक तरह से मार कर फेंक दिया गया था। देवताओं ने उनको जान से मार दिया, शरीर को काट दिया था। लेकिन देवर्षि नारद जानते थे कि ये महाभागवत वैष्णव है, तो नारद जी ने संकेत किया कि आप लोग बलि के इस शरीर को शुक्राचार्य के पास ले चलिए। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते हैं, वे इन्हें जीवित कर देंगे। तो असुरों ने ऐसा ही किया। बलि महाराज के शरीर को शुक्राचार्य जी के पास ले गया और शुक्राचार्य जी अब संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिए। और जीवित करके बलि महाराज के द्वारा एक यज्ञ कराए, जिसका नाम है विश्वजीत यज्ञ। शुक्राचार्य जी को भी बहुत बुरा लगा कि बेचारे असुर इतना परिश्रम किए, इसके बाद भी अमृत नहीं मिला और साथ ही इन लोगों को मारपीट भी सहना पड़ा। तो बलि महाराज अपने शिष्य के उन्नति के लिए एक यज्ञ किए, जिसका नाम है विश्वजीत यज्ञ। शुक्राचार्य जी, मैं क्या कहा, हाँ, शुक्राचार्य जी ने एक यज्ञ कराया, जिस यज्ञ का नाम है विश्वजीत। तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न थे अपने गुरु महाराज के प्रति। सुखदेव गोस्वामी विस्तार से कहते हैं कि गुरु महाराज के इस उपकार के कारण बलि महाराज सब कुछ उनके प्रति समर्पित कर दिए, सब कुछ समर्पित कर दिए। गुरु जी के प्रति इतने कृतज्ञ हुए कि अपने कृतज्ञता के कारण सब कुछ, अपना मन, धन, सब कुछ समर्पित कर दिए। तो उधर शुक्राचार्य भी अपने शिष्य पर बहुत प्रसन्न हो गए, समर्पित शिष्य है। तो उन्होंने एक यज्ञ किया कि चलो अब त्रिलोकी को जीतने का यज्ञ करते हैं, विश्व जीत यज्ञ। और उस यज्ञ में हवन कुंड से ही एक रथ निकला, विजय रथ। ऐसे वैदिक मंत्रों का हवन किया गया कि उससे एक रथ निकला, विजय रथ। और उस रथ पर सारे युद्ध की सामग्री भरा हुआ था, सुंदर सोने का कवच, धनुष, तलवार, विभिन्न प्रकार के अक्षय, कभी समाप्त न होने वाले तरकस, सब कुछ उपस्थित हुआ। और उस रथ को शुक्राचार्य जी ने बलि के लिए समर्पित किया, दिया। और बलि महाराज जब कवच पहनकर रथ पर आरूढ़ हुए, तो शुक्राचार्य उनको आशीर्वाद के साथ एक शंख दिए, विजय शंख। शंख ही काफी था विजय दिलाने में। बहुत प्रसन्न थे शुक्राचार्य जी। ठीक उसी समय प्रहलाद महाराज भी उपस्थित हुए और प्रहलाद महाराज बलि महाराज को आशीर्वाद देते हुए एक माला पहनाए। वह माला अत्यंत महत्वपूर्ण था। भगवान के परिकर है प्रहलाद महाराज, कभी न मुरझाने वाला माला पहनाए, जिसका पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता, न उसका गंध कभी जा सकता है। और माला पहनाकर विजय का आशीर्वाद दिए। प्रहलाद महाराज की भी इच्छा था कि बलि बड़ा अपमानित हुआ, इसको स्वर्ग मिले। इसके बाद बलि महाराज उस रथ पर बैठकर स्वर्ग पर चढ़ाई किए। उनके साथ अनेक असुर सेनापति भी थे, वह रथ केवल पृथ्वी पर चलता नहीं था, जरूरत पड़ने पर उड़ता भी था। एक बार लोग प्रश्न किए कि वो बहुत दूर तक कैसे रथ से जा सकते थे, तो उनमें जो जुड़े हुए घोड़े थे वो उड़ भी सकते थे। तो रथ लेकर बलि महाराज स्वर्ग की राजधानी अमरावती के पास गए और इनके साथ असुर सेना भी। और वहां जा करके जब बलि महाराज ने अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए गए शंख को बजाए, तो वह शंख ध्वनि इतनी भयंकर था, इतना भयंकर कि देवताओं का हृदय कांप गया एकदम। और देवताओं के राजा इंद्र एकदम घबरा गए, सभी देवता घबरा गए। देवताओं को लेकर के इंद्र बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए कहते, गुरुदेव पता नहीं बलि को कहां से स्वर्ग बढ़ गया है, इतना बड़ा तेज बढ़ा हुआ है बलि का कि लगता है कि अपने आंखों से स्वर्ग के तेज को पी जाएगा, आकाश में स्थित जितने देवता हैं उनके तेज को देख कर समाप्त कर देगा, इतना तेजस्वी है, उसके शंख ध्वनि से हमारा धैर्य जा रहा है। तो बृहस्पति जी ने समझाया कि उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की है, भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर प्रसन्न है और उनके तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, इस समय युद्ध के द्वारा उनको नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि यह तेज बलि का तेज नहीं है, भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज है और इस ब्रह्म तेज का सामना युद्ध से नहीं किया जा सकता है। यद्यपि आचार्यों ने बहुत सारी टीकाओं को लिखा है, स्मृत भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है, लेकिन समय अभाव में मैं सब कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो कहते हैं कि यह ब्राह्मणों का तेज है, बलि ने अपने गुरु के चरणों की सेवा की है। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जिस तरह बलि ने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया वैसा तुमने नहीं किया, यही कारण है कमजोर पड़ रहे हो। तो मैं भी कर सकता हूं लेकिन समर्पण तुम्हारा बलि की तरह नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि स्वर्ग को बिना युद्ध किए छोड़कर चले जाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। तो कब तक? तो कहते हैं जब तक वो ब्राह्मण बलि के प्रति संतुष्ट रहेंगे तब तक, जब वही ब्राह्मण बलि के प्रति असंतुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तब तुमको स्वर्ग मिल सकता है। कब नाराज होंगे, कैसे नाराज होंगे, इसको कोई कुछ नहीं बता रहे हैं। जब तक शुक्राचार्य जी की कृपा बनी रहेगी तब तक स्वर्ग का राजा बलि रहेगा, जब वो नाराज हो जाएंगे तब तुमको ये स्वर्ग लौट सकता है। अनिश्चित काल के लिए स्वर्ग छोड़कर देवता लोग अपने गुरु की बात मानकर चले गए। बलि महाराज बड़ा आश्चर्य में पड़े कि कोई प्रतिकार नहीं हो रहा है, चुनौती के लिए बार बार शंख बजा रहे हैं लेकिन कोई प्रतिकार उधर से नहीं हो रहा है। तो बलि महाराज अमरावती में प्रवेश किए, अमरावती का गेट तोड़ करके प्रवेश किए, तो कोई नहीं है, स्वर्ग का पद खाली है सिंहासन। बिना युद्ध किए ही बलि महाराज स्वर्ग के राजा हो गए। 15वें अध्याय में इस कथा को कहते हैं। 16वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बहुत काल के बाद कश्यप जी अपने आश्रम पर आते हैं, देवताओं की जननी अदिति के पास, क्योंकि कश्यप जी भजन में लगे हुए थे। बहुत दिन समाधि के बाद जब इनका चित प्रकृतस्थ हुआ तो आए देवताओं की जननी अदिति के आश्रम पर। तो अदिति के पास जब आए तो अदिति उनका स्वागत की, उनका स्वागत सत्कार करके जब अदिति उनके चरणों के पास बैठी बड़ी ही उदास मुद्रा में, तो कश्यप जी उनसे समाचार के क्रम में पूछने लगे, देवी सब कुछ ठीक ठाक है ना, किसी बात की कमी तो नहीं है, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कोई ना कोई कमी है, किस कारण से तुम इस प्रकार उदास हो, सब चीज ठीक से है ना। तो कहते हैं कि अपि अभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यु छंदानुवर्तिनः। कि मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म की हानि हो गई क्या, या ब्राह्मण पर कोई संकट आ गया है, सब ठीक है ना। तुम्हारे उदासी का कारण असाधारण नहीं हो सकता है, देखिए, क्योंकि वह देवताओं की जननी है। तो कश्यप जी प्रश्न कर रहे, देवी तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि कहीं धर्म पर आघात हो रहा है, अथवा ब्राह्मण दुखी है, या घर गृहस्थी के काम धंधा के कारण तुम ठीक से अपने धर्म का पालन नहीं कर रही हो, और हमारे आने के बाद तुम क्षोभ कर रही हो, घर गृहस्थी में फंसे रहने के कारण मंगला आरती ठीक से नहीं हुआ, ठीक से जप नहीं हुआ, या सुबह का जो वैदिक यज्ञ आदि है वो नहीं हुआ, क्या कारण है तुम्हारी उदासी का, अथवा घर गृहस्थी में आसक्त होने के कारण दरवाजे पर आए हुए किसी अतिथि का सत्कार नहीं की और निराश होकर चला गया, कोई भिखमंगा आया और तुम उसको दान नहीं दी, क्या कारण है। किसी भी गृहस्थ के लिए कश्यप जी कह रहे हैं, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का स्वागत किया जाए। जिस गृहस्थ के यहाँ अतिथियों का स्वागत जल से और मीठे वचन से नहीं हुआ, उसका घर सियार का निवास है। क्या कारण है, क्यों तुम उदास हो। भगवान की प्रसन्नता लाभ गृहस्थी में किया जाता है, समय से अग्नि में हवन और उचित समय पर भजन, और जिस ब्राह्मण के द्वारा अग्नि विष्णु और सर्वदेवमय भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते, तो यह दुख का विषय है। मैं समझ रहा हूं कि कोई न कोई कारण है। सब ठीक से है ना, तुम्हारे पुत्र ठीक से हैं। अब अंतिम प्रश्न असली पॉइंट पर पहुंचे हैं, तुम्हारे पुत्र सर्वे अपि कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी, तुम्हारे पुत्र ठीक से है ना, लक्ष्य से स्वस्थ मात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। सारे प्रश्नों के प्रति तुम उदासी व्यक्त नहीं की, लेकिन इस प्रश्न के साथ तुम्हारा मन ज्यादा उदास हो गया। लगता है कि यही कारण है, तुम्हारे पुत्र ठीक से नहीं है। तब अदिति जी कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी पत्नी हूँ, धर्म पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, दरवाजे पर आए हुए अतिथियों का कभी अपमान नहीं हुआ, सबका स्वागत की, समय पर हवन की, समय से भजन की है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, धर्म का भी पालन ठीक से हो रहा है, जगत में धर्म की कमी नहीं है, ब्राह्मण भी संतुष्ट हैं, क्योंकि बलि महाराज वैष्णव थे, धर्म की कमी नहीं कर सकते थे, ब्राह्मण असंतुष्ट नहीं है, सब ठीक है। लेकिन हे भगवान, मेरे दुख का कारण यह है कि हमारे पुत्र स्वर्ग में नहीं है, उनका धन छीन लिया गया। किसने छीन लिया, कहते हैं बलि ने छीन लिया। यद्यपि आप देवता और असुर दोनों के पिता हैं, आपकी दृष्टि सम है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हे भगवान, हमारे पुत्र स्वर्ग में नहीं है। मान लीजिए स्वर्ग के पद पर नहीं है, लेकिन वो कहाँ है कुछ पता नहीं, उन पुत्रों के लिए मुझे बहुत चिंता है। तयैव मारीच मनः शरीरजा प्रजा इमा सत्व रजस तमो जुषः समो भवान ता ससुरा दिशु प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वरः। अदिति जी कहती है कि हे भगवान, आप इस जगत में विभिन्न प्रकार की सृष्टि किए हैं, कुछ को मन से, कुछ को शरीर से, जितने यहाँ प्रजा हैं, देवता असुर पशु पक्षी तक की सृष्टि किए हैं कश्यप जी, सब आपके संतान हैं, सबके प्रति आप सम हैं, लेकिन जिस प्रकार भगवान विष्णु भजन करने वाले अपने भक्तों के प्रति स्नेहवान होते हैं वैसे आपको भी मेरा पक्ष लेना पड़ेगा। मैं आपका भक्त हूं, आपकी आज्ञाकारिणी हूं, इसलिए हमारे पुत्रों को फिर से राज लौट जाना चाहिए। देखिए अदिति देवताओं की जननी है, यह नहीं कह रही कि बलि का नाश कर दीजिए, करे हमारे पुत्रों को फिर से यह राज आ जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। और एक बार दीति कश्यप जी की प्रार्थना की, सेवा की, जब कश्यप जी प्रसन्न हो गए तो दीति कही कि इंद्र को मार देने वाला संतान मुझको चाहिए। असुरों की माँ थी, ये देवताओं की माँ है, बलि के प्रति इनका कोई दोष बुद्धि नहीं है, केवल अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति है, इसके लिए कह रहे हैं कि हमारे पुत्रों को राज लौट जाना चाहिए। इसको सुनकर कश्यप जी हंसने लगे, कहे क्वा देहो भौतिको नात्मा क्वा चात्मा प्रकृते पर कश्य के पति पुत्रा दया मोह ये वही कारणम। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका अपना है, कहां ये भौतिक शरीर और कहां यह अप्राकृत आत्मा, इस भौतिक शरीर के आसक्ति के कारण यह मेरा पुत्र या मेरी पुत्र या मेरा धन, इस प्रकार के व्यामोह बन जाता है। केवल दुख का कारण व्यामोह है और कुछ नहीं, अज्ञान, केवल मोह है, मोह ये वही कारणम। इतना कहने के बाद कश्यप जी कहते हैं, हे देवी, अगर तुम भगवान की आराधना करोगी तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, संपूर्ण जीवों के दुख को दूर करने वाले भगवान हैं, उनकी आराधना करो। कहां आराधना करें तो कहते हैं सर्वभूत गुहावासम, वो सब जगह रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, वासुदेवम जगत गुरुम, वो भगवान वासुदेव हैं, सब जगह उड़ाते हैं, उनका स्वरूप क्या है, किनकी आराधना करना चाहिए, कहते हैं श्री कृष्ण की, जो वसुदेव जी के यहां जन्म लिए हैं उनकी आराधना करो, वही सर्वश्रेष्ठ विश्व के स्वामी हैं और सबके हितैषी हैं, वो जगत गुरु हैं, उनकी आराधना करो तो तुम्हारे पुत्रों को धन मिल जाएगा। सब विधास्यति ते कामान हरि दीनानुकंपना अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर मम। हे देवी, भगवान हरि की आराधना करोगी तो वे अपने भक्तों के दुख को सुनते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, श्री हरि अपने भक्तों के प्रति अनुकंपित हैं और उनके चरणों में की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है। अगर उनकी आराधना करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब अदिति जी प्रश्न करती है कि हे ब्राह्मण, किस विधि से उनकी आराधना करनी चाहिए, कुछ विधि तो बताइए, कौन सी भक्ति करें, किस तरह करें कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो कश्यप जी ने उनको पयोव्रत का प्रवचन किया। कश्यप जी कहते हैं कि मैं आपको एक व्रत बतला रहा हूं जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मुझको बताया था, जिस व्रत को करने से संतान उत्कृष्ट होते हैं, संपन्न होते हैं, सुखी होते हैं। वह व्रत मैंने किया था पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र के मंगल के लिए, दोनों काम के लिए पयोव्रत है। अपने संतान की प्राप्ति, जिसको संतान नहीं हो रहा है उसको पयोव्रत करना चाहिए और जो संतान का मंगल चाहता है उसको करना चाहिए। यह पयोव्रत ब्रह्मा जी ने मुझको बतलाया था और इस पयोव्रत से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मैं वही आपको बताता हूं। येतन में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मजः यदाह ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम। मैं आपको श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला व्रत बता रहा हूं, आप इसको कीजिए। यह व्रत फाल्गुन महीना में किया जाता है, फाल्गुन अमावस्या के दिन से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है और एकम से लेकर द्वादशी तक। विधिवत बतलाए हैं एक एक नियम कैसे व्रत किया जाए। इस व्रत में दूध का सेवन करना होता है अधिक से अधिक और भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनके चरणों की आराधना की जाती है। बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से अर्चन किया जाता है। विधिवत बताए और उनके व्रत के अनुसार अदिति जी पालन की। व्रत बहुत कम दिन का था, 12 दिन का, और दीति को जब व्रत बताए तो पुनसवन व्रत बताए, एक साल में पूरा होने वाला है। एक साल के व्रत इसलिए बताए कि पहले इसकी आसुरी विचार व्रत करते करते नष्ट हो जाए। और अदिति जी तो ऐसे ही सत्व में है, देवताओं की जननी है, तो इनको 12 दिन के लिए व्रत बताए। इस व्रत का नाम है पयोव्रत, और जो दीति को बताए थे वो है पुनसमन। तो अदिति जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ व्रत का पालन की। व्रत पालन से श्री भगवान संतुष्ट हुए, और 17वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान प्रसन्न होकर के अदिति के सामने प्रकट हुए। स्वयं भगवान विष्णु रूप में अदिति के सामने प्रकट हुए। अदिति उनको देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाई। यति शिष्टाचार है कि स्त्रियों को सष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, लेकिन अदिति से रहा नहीं गया, भगवान के चरणों में बिल्कुल लौटकर सष्टांग दंडवत की, और दंडवत करके भगवान के गुणों का वर्णन करने लगी। जग्गेश जग्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक बिजनो पशमो दयाद्य समन कृधिश भगवान अस दीननाथ। कहने लगी, हे प्रभु, आप व्रत करने से यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं। हे जग्गेश, हे जग पुरुष, हे अच्युत, हे तीर्थपाद, हे तीर्थ श्रव, जिनकी कथा सुनने से मंगल होता है, हे श्रवण मंगल, भगवान के नामों का कीर्तन करने लगी अदिति। जब भगवान के अनेक नामों को एक साथ उच्चारण किया जाता है तो उसको कीर्तन कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के अनेकों नामों को बोल रही हैं। जग्गेश जग्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक बिजनो पसमोद्याद्य समनक कृधीश भगवन असि दीननाथ। हे दीननाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप विश्व के कल्याण के लिए बार बार अवतार लेते हैं, हमारे दुख को आप समझ रहे हैं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप हमारे हृदय की बात जानते हैं। अदिति कही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, केवल उनके गुणों का वर्णन करने लगी। तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ, देव माता भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम। हे देवताओं की जननी, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हारे हृदय में क्या है। जो तुम्हारे दुश्मनों ने स्वर्ग की संपदा छीन ली है उसको तुम प्राप्त करना चाहती हो, बलि को स्वर्ग से हटाकर इंद्र की राज्य चाहती हो, लेकिन हे देवी, यह कार्य बड़ा असंभव है, क्योंकि बलि के साथ मैं भी युद्ध नहीं कर सकता, देवताओं का तो ताकत है ही नहीं, मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैं प्रहलाद को वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी को अब अपने हाथ से नहीं मारूंगा। तो प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं मार पाऊंगा, न देवता मार पाएंगे, तुम्हारा कार्य कैसे पूरा होगा मुझे सोचना पड़ेगा। फिर भी 17वां अध्याय का 17वां श्लोक भगवान बोल रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, तथापि उपायो मम देवी चिंत्य संतोषितस्य व्रतचर्ययाते ममार्चनम नार्हति गन्तुमन्यथा सधानुरूपम फलहेतुकत्वात्। फिर भी हे देवी, अथापि फिर भी आपके हित के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने व्रत के द्वारा मुझे संतुष्ट कर लिया। जो भक्ति करके मुझको संतुष्ट कर लेता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है, क्योंकि मेरा अर्चन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुमने मेरी अर्चना की है और मैं तुम्हारे भजन से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा तो जरूर पूरा होना चाहिए, कोई उपाय करना पड़ेगा। नहीं करने लायक कार्य भी करके तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। देखिए क्यों भगवान भिखमंगा हो रहे हैं, क्या कारण है। भगवान अपने भक्त के भजन के अधीन हो गए, सर्वसमर्थ जगेश्वर पूर्ण भिखमंगा बनने के लिए तैयार हो गए। अब युद्ध कर ही नहीं सकते तो भीख मांगना पड़ेगा, कोई उपाय तो करना पड़ेगा। ममार्चनम नार्हति गन्तुम अन्यथा, मेरा अर्चन कभी व्यर्थ नहीं होता। जब मैं संतुष्ट हो जाता हूं तो अपने भक्त की इच्छा जरूर पूरा करता हूं, लेकिन मैं युद्ध करके उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। तो करूंगा क्या, एकदम गोपनीय बात है, किसी से कहना मत, अपने तक छिपा कर अपना रहना, पति तक से नहीं कहना है, किसी से नहीं कहना है। मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा। भगवान कहते तैयार चित चाह मपत्य गुप्तये, मैं आपकी अर्चना से प्रसन्न हो गया हूं, मैं आपको केवल साधारण भक्त ही नहीं मानता, मैं अपनी मां मान गया, और मैं अपनी रहस्य की बात गुप्त बात बताता हूं कि पयोव्रतेनानुगुणम समीडितः, पयोव्रत के द्वारा जो तुम हमारी आराधना की हो ना, मैं इतना प्रभावित हो गया हूं, स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत ते सुतान, मैं अपने अंश से तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और पुत्र बन के गोप्ताश्मि मारिष तपस्याधिष्ठितः, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगा, इंद्र आदि की रक्षा करूंगा, इंद्र का छोटा भाई बनकर इंद्र की रक्षा करूंगा। अब आप अपने पति के पास जाइए और कश्यप जी के चरणों की सेवा कीजिए, और उनके तप के द्वारा, उनके तेज पर अधिष्ठित होकर के मैं आपके घर में प्रवेश करूंगा। मारीच तपस्याधिष्ठितः, मारीच कहते हैं मरीची के पुत्र कश्यप को, मारीच के तप पर अधिष्ठित होकर, उनके वीर्य पर अधिष्ठित होकर के मैं आपका पुत्र बनूंगा। इस तरह से भगवान ने वचन दिया और अदिति बिल्कुल संतुष्ट हो गई, कश्यप जी से भी नहीं कही, लेकिन अदिति बहुत प्रसन्न थी। तो अदिति की प्रसन्नता को देखकर कश्यप जी सोचने लगे बात क्या है, तो पूछे देवी क्या प्रसन्नता का कारण है, लेकिन अदिति बोली नहीं। तो कश्यप जी समाधि में समझ गए, पूछे नहीं, जब भगवान मना किए हैं तो पति हो या पत्नी हो किसी को नहीं बताना है, तो चुप थी। तो भगवान कश्यप सर्वसमर्थ, भगवान का स्मरण किए और सब कुछ जान गए, बहुत प्रसन्न हुए। और फिर समय पर अदिति को गर्भ धारण हुआ और उनके गर्भ से श्री भगवान अवतार लिए, इसका वर्णन 18वें अध्याय में है। 18वां अध्याय में भगवान के अवतार का वर्णन है, किस तरह से भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं, और उनके प्राकट्य काल में देवता लोग ऋषि लोग उनका सम्मान करते हैं। यहां वर्णन है स्पष्ट कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा दे चक्रुस तत् जन्म दक्षिणम। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को अभिजित मुहूर्त में भगवान का अवतार हुआ, ठीक दोपहर में। द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्य दिन गतो नृप, हे राजन सूर्य ठीक बीच में थे। विजया नाम सा प्रोक्ता यश्याम जन्म विदुर हरे है, उस तिथि को विजया द्वादशी कहते हैं। जब भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं ने दुंदुभिया बजाई, मृदंग बजाया, बहुत प्रसन्नता हुई, पुष्पों की इतना वर्षा किए कि वह आश्रम ढक गया जहां अदिति जी भगवान को जन्म दी, और सभी देवता और ऋषियों ने भगवान को भेंट समर्पित किया। भगवान से केवल मांगना ही नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। जय जगदीश हरे, केवल प्रार्थना करते हैं सुख संपत्ति घर आवे दुख मिटे तन का। जब भगवान आए तो यहां सभी लोग दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार से दान भगवान को दिया गया, सभी सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष सभी लोग वहां उपस्थित थे, सब नाच रहे थे, देवता लोग बहुत प्रसन्न थे, ऋषि लोग बहुत प्रसन्न थे, सब लोगों ने भगवान को दिया। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और सबको देखते देखते वामन रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान के रूप के अनुसार सब दान दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने उनका संस्कार किया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो उनको गायत्री दिए, सब वर्णन है। बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ दिया, कश्यप जी ने उनको मेखला दिया, जैसा रूप है वैसा संस्कार दिया गया, उनको वस्त्र दिया गया, और भूमि ने उनको दंड दिया, और साक्षात सविता उनको गायत्री ने उनको उपनयन संस्कार के समय, जब संस्कार हो रहा था तो उस समय बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं उनको गायत्री मंत्र दिए और ब्रह्मसूत्र दिए, कश्यप जी उनको मुंज की पेटी दिए, और माता अदिति ने उनको वस्त्र दिया, लंगोटी दिया कौपिन पहनने के लिए, और पृथ्वी ने उनको दंड दिया, आकाश के देवता ने उनको छत्र दिया, और ब्रह्मा जी साक्षात कमंडल दिए, ऋषियों ने उनको कुश दिया यज्ञ करने के लिए। जैसा रूप बनाए, छोटा भिखमंगे का मेकअप करना है उसके अनुसार उनको सब चीज दिया गया है। तो इस प्रकार उनको भिक्षा पात्र दिया गया, कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया, और भगवती लक्ष्मी ने सबसे भगवती पार्वती ने उनको सबसे पहले भिक्षा दिया अन्नपूर्णा जी ने। इसके बाद भगवान सब लोगों के सामने ही कहने लगे कि बलि यज्ञ कहाँ कर रहा है, तो सब ब्राह्मण आपस में चर्चा कर रहे थे कि लगता है इतना मेकअप कर लिए बलि के यज्ञ में जाएंगे क्या, और वहां जो उपस्थित थे ब्राह्मण सब कह रहे थे बलि के यहाँ चलना है, बातचीत कर रहे थे। तब तक श्रुत्वा अश्वमेधई जजमानम ऊर्जित बलिम भृगुणाम उपकल्पितस्तत जगाम तत्राखिल सार संभितो भारेण गाम सन्यम मयन पदे पदे। भगवान कहने लगे मैं भी जाऊंगा बलि के यज्ञ में। तो वहां देवताओं को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या कर रहे हैं, और ब्राह्मण जा रहे थे भी चल दिए। तो जब बलि के यज्ञ में भगवान चल दिए तो उस समय भगवान जब वहां यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। इनमें जो तेज निकल कर आ रहा है उसको देखकर बलि चकित हो गए, जितने ब्राह्मण ऋतवी शुक्राचार्य सभी लोग खड़ा हो गए, ये कौन है। और जब भगवान को देखे बलि महाराज तो उनके चरणों में प्रणाम किए और अपने भाग्य की सराहना किए। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि महाराज भगवान के स्वरूप को देखकर इतना प्रभावित हुए कि बिना जाने कि ये कौन है भगवान के चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम कर करके उनके चरण को धोने लगे। सबसे पहले बिना समझे कि ये भगवान है कौन है, कुछ नहीं समझे, लेकिन इसके बाद भी बलि महाराज ने उनका चरण धोया, और चरण धो करके कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यत्पाद शौचम जनकल मसापहम सधर्म विद्धन दधान सुमंगलम यद देव देवो गिरसश्चंद्र मौली दधार मुद्न्या पर्याच भक्त्या। बलि महाराज वास्तव में भगवान के भक्त थे। एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ, केवल ब्राह्मण जानकर के उनका चरण धोए, लेकिन अनजान में भी उन्होंने उस चरण को धोया जिस चरण को ब्रह्मा जी धोए हैं, जिन चरण धोवन को भगवान गिरीश चंद्रमौली शंकर भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं, उस चरण को बलि अनजान में धो करके अपने चरण सिर पर धारण किए और अपने यज्ञशाला में छिड़के। इसके बाद कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामि ते, हे ब्रह्मण मैं आपके लिए क्या करूं, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। आप ऐसा लगता है कि समस्त ब्राह्मणों का तेज है, साक्षात शरीर धारण करके ब्रह्म तेज हमारे जग में उपस्थित हो गए हैं। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मैं समझ गया कि ब्राह्मण लोग उचित वैदिक मंत्रों से हवन किए हैं जिसके कारण आप उपस्थित हुए। मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, आप वेशभूषा से देखने से ऐसा लग रहे हैं कि कुछ चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ, आप मांगिए। हे परम पूज्य, आपको गाय चाहिए, घर चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, या अभी बटु ब्रह्मचारी रूप है, विवाह करना चाहते हैं, ब्राह्मण की कन्या चाहिए, क्या चाहिए बोलिए। जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, गांव दे सकता हूँ, रथ दे सकता हूँ, हाथी घोड़ा धन संपत्ति पत्नी की व्यवस्था करा सकता हूँ, जो चाहिए मांग लीजिए। तो भगवान देखिए, वास्तव में भगवान भिक्षु के रूप में उपस्थित है। एक दान मांगने वाले को कैसा होना चाहिए, भगवान यह आदर्श प्रस्तुत किए, खूब प्रशंसा किए। जिसे कुछ लेना है उसकी प्रशंसा करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो उचित बोल रहे हैं। आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ नपुंसक जो किसी के युद्ध का ललकार सुनकर पीठ दिखा दे या किसी याचक के सामने हाथ पसारने पर कुछ न दे। दो पुरुषार्थ है, एक किसी के याचना पर अपना धन देना और शत्रु के सामने युद्ध करते हुए मर जाना। आपके परिवार में ऐसे बड़े बड़े वीर हुए हैं, हिराक्ष और हिरकश्पु, जिनकी गाथा सारी दुनिया गाती है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को आज तक याद है उन दोनों वीरों की वीरता। भगवान वराह रूप में आकर हिराक्ष के साथ युद्ध किए, यद्यपि भगवान उसको युद्ध में हरा दिए, लेकिन आज तक उसके गदा का प्रहार उनको याद है। वामन देव कह रहे हैं, खुद वही है, उनको याद होगा, कह रहे हैं कि आज तक याद है कि किस प्रकार हिराक्ष युद्ध करता था। और हिराक्ष के मारे जाने पर हिरकस्पु जो विष्णु को चैलेंज किया वो तो अद्भुत है। खोज गया तीनों लोक में, यहां तक कि वैकुंठ भी चला गया, और उसके भय से भगवान छिप गए। वो जानते थे कि ये बहिर्मुख है, उसके अंतःकरण में हृदय में छिप गए और सारे लोक में खोज कर घोषणा कर दिया कि हमारे भय से विष्णु मर गया, अब त्रिलोकी का स्वामी एकमात्र मैं हूं। तो इस प्रकार के वीर आपके वंश में हुए हैं जो दुश्मन के ललकार का जवाब देते हैं। और आपके वंश में एक से एक दाता भी हैं। आपके पिताजी स्वयं इतने बड़े दाता कि देवताओं के जानने के बाद भी उनके याचना पर अपना जीवन दे दिए। तो इस संसार में देखा जाता है कि लड़ते हुए तो लोग मर जाते हैं, सैनिक लोग भी युद्ध में मर जाते हैं सीमा पर लड़कर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई उचित पात्र आ गया दान के लिए और उसको अपना संपत्ति दे दें, दान दे दें, यह बड़ा कठिन है। लेकिन आपके वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जो न दे, तो अवश्य आप देंगे, मैं समझ रहा हूं आप दे सकते हैं। लेकिन हे राजन, मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं अपने डेग से 3 डेग भूमि चाहता हूं, बस 3 डेग पृथ्वी दे दीजिए, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो जब इस प्रकार की बात बलि महाराज के सामने भगवान ने कहा तो बलि महाराज हंसने लगे, कहने लगे बोलने में तुम तो एकदम बूढ़े जैसे बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अभी बच्चा हो, तुम अपने हित के विषय में नहीं जानते हो। कहते अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता तुम बालो बालिशमती, तुम वास्तव में भी बच्चे हो, बुद्धि भी बचकानी है। स्वार्थम प्रत्यय बुद्धो जथा, तुम अपने स्वार्थ के विषय में नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो। 3 डेग में तो कुटिया भी नहीं बनेगी, 3 डेग क्या करोगे। देखिए बलि महाराज से अब यही गलती हो रही, मांगे क्यों, इसका उत्तर हो गया। अपने भक्त अदिति के प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान बलि के साथ युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए भिक्षुक बन गए। अच्छा, आप फिर बलि दे दिया इसके बाद बांधे क्यों, इसका उत्तर यहां आ रहा है। अब बलि से गलती क्या हो रही है, कहते हैं माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक मिश्वरम, तीनों लोकों का एकमात्र ईश्वर मुझसे जो अपने वचनों से संतुष्ट कर दिया, और वह व्यक्ति आकर मांगे और फिर उसको मांगने की बात रही गई, मेरे दरवाजे पर एक बार भिखमंगा बनकर आ गया और वह फिर किसी के पास जाता है तो उसमें मेरी बेइज्जती होती है, एक बार भूल कर जो भिक्षुक आ जाता है उसकी भिखमंगी समाप्त कर देता हूं, मैं तीनों लोकों का एकमात्र स्वामी हूं। और किसके सामने कह रहे हैं जो तीनों लोकों के सचमुच एकमात्र स्वामी है? तो बलि ने चैलेंज पूर्वक कहा कि मैं कौन हूं, तुम मुझको पहचानते नहीं। तो भगवान सुनकर कहे, अभी तुम्हारा नशा ढील कर दूंगा, लोकानक नाम एक मिश्वरम हो तो इसका पता अभी चलेगा जब नापूंगा। कहते हैं कि मैं तीनों लोक का एकमात्र ईश्वर हूं। एकमात्र ईश्वर कहकर बलि महाराज ने भूल कर दी, भूल गए कि भगवान सबके मालिक है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, आ यहां बलि कहते हैं कि मैं एकमात्र कह दिए। भला कहते कि मैं भी एक मालिक हूं तो हो सकता था कि भगवान के बाद अपने को रख रहे हैं, लेकिन एकमात्र ईश्वर कहकर बलि महाराज से भूल हो गई। और फिर एक कहते हैं कि जो एक बार न पुमान माम उपब्रज भूयो याचित मरहती तस्मात वृति करीम भूमि बटो कामम प्रतीक्ष में, मुझसे एक बार मांग कर फिर मांगने का काम नहीं रहना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा दाता नहीं जिसको एक बार दे दे और वो संतुष्ट हो जाए, वैसा दाता केवल भगवान है। जहां अत्यंतिक दान अपना ऐश्वर्य भगवान देकर भिखमंगी समाप्त कर देते हैं, लेकिन बलि महाराज ये बात कह दिए। तो भगवान कहते हैं कि हां आप समर्थ है, लेकिन आपका पोजीशन अपने जगह पर है कि आप भिखमंगी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा पोजीशन अपने जगह पर है, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। और जिसको संतोष नहीं होगा उसको कुछ भी लेकर संतुष्ट नहीं हो सकता है। तीन लोग क्या पूरा भूमंडल लेकर सप्त दीपवती मही लेकर भी संतुष्ट नहीं होगा। बहुत ऐसे राजा हुए, वे लोग बहुत कुछ प्राप्त किए लेकिन उससे उनको क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुए। चक्रवर्ती सम्राट लोग भी संतुष्ट नहीं हुए। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का संतोष ही धन है। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो उसका ब्रह्म तेज वैसे नष्ट हो जाता है जैसे जलते हुए आग में पानी डाल देने से आग शांत हो जाता है। तो हम अपना ब्रह्म तेज नहीं नष्ट करना चाहते हैं। हम आपके बहकावे में आकर तीन से ज्यादा डेग नहीं लेंगे, हमको तीन डेग चाहिए और तीन डेग भूमि से हम संतुष्ट हो जाएंगे। आप दीजिए, और यदि आप मुझको दे सकते हैं तो तीन डेग दीजिए, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जितने व्यक्ति को जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, लोभ में पड़कर ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एतावतैव सीधो हम वित्तम यावत प्रयोजनम, मैं केवल तीन डेग से संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बलि महाराज कहे, अच्छा नहीं मानोगे तो लो। जब ही बलि महाराज उनको देने के लिए पानी लिए संकल्प देने करने के लिए, थे शुक्राचार्य जी वहां उपस्थित थे, वहीं उपस्थित थे, बोलने लगे। शुक्राचार्य जी कहते, क्या कर रहे हो? अरे विरोचन पुत्र, ऐसा वैरोचने साक्षात अपनी बाप की तरह सब कुछ देवताओं को दे देगा क्या? विरोचन वैरोचन इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप इसी तरह का भूल किया और तुम भी उसी को करोगे क्या? ये जानते हो कौन है? साक्षात विष्णु रव्य, साक्षात भगवान विष्णु है। बलि महाराज, विष्णु तो यहां कैसे आ गए? तो कहते हैं कश्यप अदितेर जातो, कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिए हैं देवा नाम कार्य साधक, देवताओं का काम बनाने के लिए ये भिखमंगे बनकर आए हैं, सब कुछ मांगकर इंद्र को दे देंगे और सारे असुरों का यह ऐश्वर्य छीन जाएगा। देखने में ब्रह्मचारी लग रहे हैं लेकिन एक कपट से रूप धारण किए हैं। और जानते हो, तुम तीन डेग दे भी नहीं पाओगे बेटा, दे भी नहीं पाओगे। एक डेग में नीचे के लोग नाप लेंगे और एक डेग में ऊपर के, तीसरा डेग के लिए तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है। और जानते हो इसके बाद क्या होगा? इनके सामने कहकर नहीं दोगे तो सीधे नरक चले जाओगे। तीन डेग पूरा नहीं करोगे तो निष्ठाम ते नरके मन ने यह पदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुदा से यो निश प्रतिपाद तुम भगवान। काबिल मत बनो, तीनों लोक का स्वामी मत बनो, ये विष्णु है, इनके पास तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। कहते अरे विष्णु है? बलि महाराज सुन रहे हैं, कहते देखो गृहस्थों को अपने धन को पांच भाग में बांट कर रखना चाहिए। परसेंटेज नहीं बता रहे हैं 10% क्या, लेकिन उसका पांच विभाग होना चाहिए। धर्माय जस से अर्थाय कामाय स्वजनाय च। कुछ धन धर्म के लिए रखना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं आधा धर्म के लिए रखना चाहिए, लेकिन परसेंटेज नहीं बतला रहे हैं, लेकिन धन का 5 विभाग होना चाहिए। धर्म के लिए कोई आ गया कलेक्शन करने, साधु महात्मा भिक्षुक भिकमंगा उसको देने के लिए, या जस से अपनी प्रतिष्ठा के लिए, किसी दरवाजे पर आने वाले का स्वागत होना चाहिए खिलाने पिलाने के लिए, तो जस के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, अर्थाय पूंजी के रूप में धन कमाने के लिए धन रखना चाहिए, और कामाय खाने पीने के लिए, और स्वजनाय च अपने स्वजनों के लिए, पुत्र स्त्री आदि के लिए। धर्म, जस, पूंजी और काम, अपनी भोजन कपड़ा और फिर स्वजन, 5 भागों में धन को खर्च करके रखना चाहिए। पंचदा विभजन वीतम इहा मूत्र चमोदते। जो 5 प्रकार से धन को बांट कर रखता है वो दुखी नहीं होता है। तो बलि महाराज कहे कि मैं झूठ बोलूं, मैं तो कह दिया दूंगा तो फिर क्या करूं, ना दूं, कह दिया तो क्या हो गया। सब जगह झूठ को निंदा नहीं किया जाता है, 6 जगह पर झूठ बोलने से झूठ की निंदा नहीं की जाती है। चल सकता है, चलेबुल झूठ है, कहां कहां झूठ काम चल सकता है, निंदनीय नहीं है। शुक्राचार्य जी बड़े सावधान है, ये नहीं कह रहे हैं कि ये झूठ झूठ नहीं है, कहते हैं ये निंदनीय झूठ नहीं है, जिसकी निंदा नहीं होती। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याद जुगुप्सितम। अपनी पत्नी से रोज कुछ न कुछ डिमांड करती है, कह देना चाहिए हाँ देंगे लाएंगे, अगर नहीं भी दिया तो चल सकता है, कहां पंचायत होने जा रहा है नहीं दिया। रोज डिमांड करती है, उसके मांग को स्वीकार करके पूरा नहीं किया तो चल सकता है। नर्म मजाक में, अपने मित्र दोस्त से कभी झूठ बोल देते हैं मजाक में, कुछ चीज छूट गया वो फिर हैरान हो रहा है, खोज रहा है, कहे नहीं नहीं यहां नहीं है, ज्यादा परेशान होकर फिर देते हैं, तो चल सकता है ऐसा झूठ। फिर विवाह है, विवाह करने में लड़की की प्रशंसा या लड़के की प्रशंसा करने में, कम पढ़ी लिखी है या ऐसा है वैसा है कुछ कह दें, ठीक है बहुत सुंदर है ये है वो है, किसी तरह विवाह दान दहेज की बात कहकर नहीं दिए नहीं किए तो चल सकता है। विवाह में झूठ बोला जा सकता है, चलेबुल झूठ। वृत्त्यर्थ है, अपने जीविका के लिए बिजनेस व्यापार में कुछ झूठ बोला जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन वह झूठ दाल में नमक के समान होना चाहिए। दाल में नमक नहीं डालेंगे तो फीका हो जाएगा, ज्यादा डाल देने पर भी नहीं चलेगा, तो कुछ काम भर झूठ बोलना पड़ता है। प्राण संकट है, जब जीवन संकट में पड़ गया तो झूठ बोलकर जान बचा सकते हैं। या गाय और ब्राह्मण के रक्षा में, कोई कसाई गाय खोज रहा है तो कह दिए नहीं नहीं इधर नहीं गए, मैं सुबह से बैठा हूं, अथवा गई है पूरब तो बतला दीजिए पश्चिम गई, तो वहां झूठ झूठ नहीं माना जाता है। तो क्या हो गया, इसमें अपनी वृत्ति चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, इसलिए कह दो नहीं दूंगा, या कहिए मैं अपने हिसाब से दूंगा आपके पैर से नहीं दूंगा, कुछ कह दो। तो बलि महाराज कहते हैं कि लेकिन गुरुदेव आप बात तो बहुत सुंदर कहे गृहस्थों के लिए आगे के 20वें अध्याय में, लेकिन मैं केवल आपका शिष्य नहीं हूं, यह भ्रम मत कीजिए कि आपकी बात मान लूंगा। स चाहम वितलोभे न प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामिति प्रह्लादि कृतो जथा। मैं पहला प्रहलाद का शिष्य हूं, इसके बाद आपका प्रह्लादी हूं, प्रह्लादी होकर मैं कैसे झूठ बोल दूं, संकट के लिए अपने पर आने वाले विपत के लिए भगवान को नकार दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रह्लादी कहकर के बलि महाराज ने बता दिया कि अपने ऊपर आने वाले संकट को जिस प्रकार प्रह्लाद महाराज ने झेल लिया भगवान के लिए, वैसा मैं सब कुछ झेल सकता हूं, लेकिन इस ब्राह्मण को नकार नहीं सकता। भगवान को दे नहीं देकर कहने कह दिया कि दूंगा तो मैं नकार नहीं सकता। आप जो भय दिखा रहे कि नरक चला जाऊंगा, नाहम विभेमि निर्यान, मैं नरक से नहीं डरता, अधन्याद असुखार्णवात, न मैं धन नष्ट होने से डर रहा हूं, न दुख के समुद्र से डरता हूं, मैं अस्थानात चौनात इस स्वर्ग के पद से गिर जाऊंगा इसलिए नहीं डर रहा हूं। मुझको डर क्या है कि एक ब्राह्मण को देने का वचन करके नकार दूंगा, इसलिए मैं नकारूंगा नहीं। और आप धन की बात कर रहे हैं, धन क्या होता है जी? श्रेय कुर्वंती भूता नाम साधो दुस्तेजा सुभी दद्धंग शिवी प्रभृतय को विकल्पो धरा दिशु। कहते हैं ऐसे लोग दुनिया में हुए हैं कि दूसरे के कल्याण के लिए अपना दुस्तेज शरीर दे दिए हैं। आप इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, दधीची जी ने देवताओं के लिए अपना शरीर दिया, शिवी महाराज ने अपना शरीर देने के लिए तैयार हो गए, और ये धरती तो बाहर की चीज है, अभी मेरा शरीर सुरक्षित है, इस धरती को देने में क्या सोचना है, मैं निश्चित रूप से दूंगा। जब इस तरह से कहने लगे बलि महाराज तो शुक्राचार्य जी एकदम नाराज हो गए, कहने लगे कि अरे दुष्ट, तुम तो बात मानने वाले नहीं हो, जाओ इस प्राकृत संपत्ति से हीन हो जाओ, सिरहीन हो जाओ। एक कथाकार कह रहे थे कि बलि महाराज को इतना मानते थे शुक्राचार्य जी की, इतनी सभा में उनकी अवज्ञा करने के बाद भी अपने शिष्य के प्रति स्नेह नहीं गया, श्राप भी देने चले तो वही श्राप दिए जो होने वाला है, ऐसा नहीं दिए कि तुम जल जाओ, नष्ट हो जाओ, ये हो जाओ, कुछ नहीं, कहे तुम श्रीहीन हो जाओ, श्रीहीन तो होने वाले हैं, जो ही हम नापेंगे सब चला जाएगा, तो जो होने वाला था वही श्राप दिए, क्योंकि प्यारा शिष्य था, इसलिए बलि महाराज ने ऐसा श्राप दिया। इसके बाद फिर संकल्प किए, और जो ही संकल्प किए श्री भगवान नापना जब चालू किए तो अद्भुत आश्चर्य हुआ, एक डेग में नीचे के लोग विशाल विश्व रूप में हो गए, त्रिविक्रम, और नीचे के लोग को नाप लिए और दूसरे डेग में ऊपर के लोगों को, ऊपर के लोगों में जब उनका चरण जाने लगा सत्य लोक में तो देवता लोग चकित हो गए, भगवान का चरण है, अगवानी करने के लिए चले, तब तक वह चरण ब्रह्मांड के कवर को फाड़ दिया, इतना तेज बढ़ा, बहुत बढ़ाकर नाप रहे थे, इतना तेज बढ़ाए कि ब्रह्मांड का कवर फट गया, और वो कवर फट करके बिरजा का जल जो अप्राकृतिक स्पिरिचुअल जल है वो उनके चरणों को धोकर सत्यलोक में गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी उस चरण धोवन को अपने कमंडलों में रोकने का प्रयास किए, लेकिन वह जल तो अनवरत गिर रहा था, इसलिए कमंडल से भी ओवर होकर वो ब्रह्मांचल के घाटियों में गिरने लगा। पंचम स्कंद के 17वें अध्याय में ये वर्णन है कि किस प्रकार वो जल तीन भाग में विभाजित हुआ, तो इस प्रकार गंगा की उत्पत्ति हो गई, और वह गंगा जल अप्राकृत जल है, स्पिरिचुअल जल, कारणोदक जल है, कारण समुद्र का, आज तक उस ब्रह्मांड का मरम्मत नहीं हो पाया है, एक बार भगवान के अंगूठा लगकर फट गया तो उसी प्रकार फटा हुआ है, और वहां से जल चूता है सत्यलोक में, और वही चूता हुआ जल यहाँ हिमाचल से होते हुए हिमालय से भारत वर्ष के उत्तर भाग में बहते हुए सागर में जाता है गंगा जल, इसलिए वह जल अपवित्र नहीं हो पाता, भले शहरों की नलियां गंदा पानी आवे, लेकिन वह स्पिरिचुअल जल जो कारण जल समुद्र का है वह आ रहा है। तो भगवान ने एक साथ अनेक काम कर दिए, गंगा को उत्पन्न कर दिए, तो इस प्रकार भगवान के इस विराट रूप को देखकर सब चकित हो गए, सब चकित हो गए, और बड़े बड़े लोग उनके जस की सराहना कर रहे हैं, देवता लोग अद्भुत रूप को देखकर, और इस प्रकार बलि महाराज देख रहे हैं, चकित हैं, तब तक भगवान दो डेग में सब कुछ नाप कर और आगे कहते हैं कि तुमने तीन डेग देने के लिए कहा, धूर्त झूठा, मुझको धोखा दिया, गरुड़ जी को कहे इसको बांध दो, अरेस्ट करो पहले, तुम मुझको क्यों धोखा दिया, क्यों झूठ बोला, इस तरह से भगवान डांटना चालू किए, इतना डांट रहे हैं, इतना डांट रहे हैं कि बलि महाराज चुपचाप सुन रहे हैं, तुमने मुझको कहा कि दूंगा लेकिन कह कर भी तुमने नहीं दिया, बनवा दिए। तो बलि महाराज बड़ी धैर्य के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, वास्तव में आप उत्तम श्लोक हैं, आपकी तुलना तो मैं नहीं कर सकता, आप अपने जस की रक्षा जरूर करेंगे। आपने कहा है कि लूंगा तो लेकर रहेंगे और मैं धूर्त हूं, मैं झूठा हूं, तो यह तो सारी दुनिया देख ली। एक कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि बलि महाराज एक व्यंग्योक्ति कह रहे हैं, हे उत्तम श्लोक, आपने यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बेलिकम सुरवर्ज मन्यते करो मृतम तन्न भवे प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशिष्णि में निजम। कहते हैं कि हे प्रभु, हे उत्तम श्लोक, आपका चरित्र, आपकी महिमा बड़े श्रेष्ठ श्लोकों में, शास्त्रों में लिखा गया है, सभी लोग आपके जस की सराहना करते हैं, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा धूर्त हूं, मैं कुछ भी करूंगा, आप नीच ही हूं, लेकिन आपने तो बहुत उत्तम व्यवहार किया, आए बामन बनकर और बड़ा शरीर बढ़ाकर नाप लिए, उल्टे मुझको डांट रहे हैं। तो जब आप मांग रहे तीसरा डेग कहां रखूं, तो हे प्रभु, आपने मेरा जो कुछ था वो ले लिए, अब मैं बच गया हूं, मेरा ये शरीर बच गया है, अपना तीसरा पद मेरे सिर पर रख दीजिए, बस पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, मेरे सिर के ऊपर आप रहकर अपना तीसरा डेग भी पूरा कर लीजिए। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि धन से धनवान का कीमत दुना होता है, मेरा संपूर्ण धरती दो डेग के बराबर है, आपके दो डेग में अट गया और उसके दुना चार डेग के बराबर मैं अभी पड़ा हूं। आप आए थे तीन डेग लेने, ना छह डेग ले लीजिए, अपना तीसरा डेग मेरे ऊपर दे दीजिए, दो डेग में संपूर्ण संपत्ति और उसके दुना चार डेग के बराबर मैं, तो मुझको भी ले लीजिए, आए थे तीन डेग लेने, छह डेग ले लीजिए, आप अपना संकल्प पूरा कीजिए। और इसके साथ कहते हैं कि माता पिता भी इस तरह स्नेह नहीं करते अपने बच्चे के प्रति, उनको ममता होता है, वो दंड नहीं दे पाते हैं गलती करने पर भी, लेकिन आप एकमात्र सुहृद हैं कि वास्तव में गलती करने वाले को उचित दंड देते हैं। मैं वास्तव में गलती किया हे नाथ, आपके सामने अपने को त्रिलोकी का स्वामी कहा, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए, एकदम उनको समझ में आ गया। तो इस प्रकार बलि महाराज प्रार्थना कर रहे थे, तब तक प्रहलाद महाराज वहां उपस्थित हो गए। तो प्रहलाद महाराज आए तो कहने लगे, वाह, धन्य है प्रभु, आपने जैसी कृपा बलि के ऊपर की, हमारे असुरों के ऊपर किया, वैसी कृपा किसी के ऊपर नहीं किया। यदि बलि महाराज अभी स्तुति कर रहे थे, कहे कि ये धन संपत्ति वास्तव में आपका है, जो इसको अपना मानता है, इसके फेरे में पड़ा रहता है, वो दुख भोगता है। मेरे पितामह प्रहलाद ने आपके चरणों में सब कुछ समर्पित किया, अभी बलि महाराज बोल रहे थे, तब तक जब प्रहलाद महाराज आ गए, तो प्रहलाद महाराज आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किए और कहे, धन्य है प्रभु, ऐसी कृपा तो मैंने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, आपका देना जितना उत्तम है उससे ज्यादा लेना है। अगर किसी को आप इस भौतिक संपत्ति को देंगे तो वह संपत्ति आपके भजन को छुड़ा देता है, आप कृपा करके जिसका भौतिक संपदा ले लेते हैं उस पर आपकी स्पेशल कृपा है। वास्तव में बहुत बड़ा कृपा किए, इस किस भक्ति का फल है जो आप बलि को इतना महान कृपा किए हैं, और भगवान सबके सामने बलि के सिर पर अपना चरण रखे, इसको देख लिए प्रहलाद महाराज, एकदम प्रहलाद महाराज नाच उठे। तब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि बलि को बांध करके भगवान इस प्रकार डांट रहे हैं, बलि अरेस्ट है, तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके आए कुछ कहने के लिए। अभी लाइन में ही खड़े हैं प्रहलाद महाराज और उनके साथ ब्रह्मा जी, तब तक विंध्यावली आ गई, बलि महाराज की पत्नी। तो विंध्यावली ज्यों आई त्यों ब्रह्मा और प्रहलाद दोनों साइड दे दिए कि चलो ये कुछ कहना चाहती है तो कह ले। तो ब्रह्मा जी बोलने जा रहे थे, हाथ जोड़ लिए थे, तब तक वो हट गए। बद्धम भिक्ष पतिम साध्वी सब पत्नी भय विहवला, बलि की पत्नी कांपते हुए आ रही है, तो यहां हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा साइड में हो गए और प्रहलाद महाराज भी साइड में हो गए, ठीक है इसको बोलने लीजिए। तो विंध्यावली एक श्लोक बोलती है बहुत महत्वपूर्ण, कि हे नाथ,
यह संपूर्ण जगत आप अपने आनंद के लिए बनाए हैं, आपके लीला क्षेत्र है। क्रीडार्थम आत्मना इदम ति जगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुरियु कर्तु प्रभो तव कियमस यता आवहंती त्यक्ता ह्रियस्त्वदवरोपित कर्तृवादः। हे नाथ, यह संपूर्ण जगत आपकी लीला है, आप अपने आनंद से रचना किए हैं, लेकिन बुद्धिहीन लोग, मूर्ख लोग अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। ऐसे बुद्धिहीनों के द्वारा, ऐसे निर्लज लोगों के द्वारा आपका को क्या दिया जा सकता है, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सर्वलोक महेश्वरम आप हैं, वैसे लोगों को आप क्या देंगे, आप क्या दंड देंगे, जब इतना बुद्धि नहीं है कि तीनों लोक के स्वामी अपने को कह रहा है, तो ऐसे बुद्धू को आप दंड देकर ही क्या करेंगे। आप इसको क्षमा कर दीजिए। ऐसी दशा में मूर्ख जब है तो मूर्ख व्यक्ति आपके क्षमा का पात्र है। ये निर्लज है, अपने को कह नहीं, संभाल नहीं पाया, अपने को तीनों लोक का स्वामी जो कह सकता है वो कितना बुद्धि है उसके पास, आप तो समझ ही गए। अथवा निश्चित रूप से दंड का पात्र है, इसको दंड दीजिए, इस तरह से कह रही है। तो टीकाकार लोग कहते हैं कि जब कोई बलवान व्यक्ति किसी को पकड़ ले, मारने लगे, तो उसके प्रति कोई अगर विरोध करता है, अपना स्वजन, अपना बाप भाई, तो उसको तो मारता ही है, उसको भी पीटने लगता है। तो वहां एक नीति है कि अपने लोग की ही निंदा की जाए तो शायद वो क्रोध शांत हो जाएगा। तो शायद बिंधावली इसी नीति का पालन की, अपने पति की निंदा कर रही है, भगवान की प्रशंसा। तो बलि महाराज की निंदा जब की बिंध्यावली, तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। चलो, यह ट्रिक कालिये की पत्नियों ने भी अपनाया, भगवान की प्रशंसा करने लगी और कालिये की निंदा, तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। तो स्त्रियां बहुत चलाक होती हैं, कैसे अपने पति की रक्षा करना है ये जानती है ट्रिक। तो बिंध्यावली जब इस प्रकार बोलने लगी, बोलकर हट गई, तब ब्रह्मा जी कहते हैं आगे बढ़कर कि हे नाथ, आप भूत भावन हैं, भूतेश हैं, देव देव हैं, जगतपति हैं, मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में जो दुर्वा दल और एक अंजलि पानी देता है उसका आप दास बन जाते हैं, और यह बलि सब कुछ आपके चरणों में दे दिया, इसके बाद भी अरेस्ट कर लिए हैं, ये क्या हो गया है, आश्चर्य हो गया कि आप इसको बांध लिए, इतना दान देने के बाद भी अपराधी है। तब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, अब भगवान बोलते हैं, भगवान का कुछ वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका प्राकृत संपदा छीन लेता हूं, क्योंकि यह फंसाने वाला है, इसके कारण व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। जन्म कर्म वयोरूप विद्यश्वर धनादिभि यद यस्य न भवे स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। हे ब्रह्मा जी, धन संपत्ति, ऊंचे वर्ण में जन्म लेना, विद्या ऐश्वर्य प्रतिष्ठा, ये अहंकार बढ़ाने वाला है, व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है। अगर इतना प्राप्त होने के बाद भी अहंकार नहीं बढ़ा तो समझ जाइए कि मेरी कृपा है। देखिए, आप देख रहे हैं ना इस बलि को, यह बलि किस प्रकार से अपने स्वभाव में स्थिर है, देने का संकल्प किया तो हट नहीं रहा है। देखिए, ऐसा दानो दैत्यानाम अग्रगणी कीर्ति वर्धन, यह दानो दैत्यों की कीर्ति बढ़ाने वाला बलि माया को जीत लिया है, दुखी नहीं है, आप इस तरह के क्षोभ कर रहे हैं, इसका धन छीन लिया गया, ये अपने स्थान से गिर गया, इसको अरेस्ट कर लिया, इसके परिवार वाले इसका साथ छोड़ दिए, मैं इसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया, सब कुछ के बाद भी यह किस धैर्य के साथ सहता है, गुरुणा भर्सिता सब तो, गुरु महाराज नाराज हो गए, श्राप दे दिए, लेकिन जहु सत्यम न सुव्रत, इसके बाद भी यह सुंदर व्रत पालन करने वाला, सुंदर व्रत है भगवान की भक्ति, मेरी सेवा करने के लिए जो तत्पर है, ऐसा सुव्रत अपने पद को नहीं छोड़ा, अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। छलई रुक्तो मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक, यह सत्यवादी मेरे कपटपूर्ण व्यवहार से भी उद्विग्न नहीं हुआ। मैं बामन बनकर आया और विशाल रूप से नाप रहा हूं, फिर भी इसको कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो देखिए, यह है मेरे भक्तों का अचल दृढ़ हिमालय की तरह इसकी स्थिरता। इसको मैं जगत में स्थापित करने के लिए परीक्षा ले रहा हूं। दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि मेरे भक्त कितने धैर्यवान होते हैं। आप घबराइए मत, ये आने वाले मनवंतर में सावर्णी मनवंतर में यह इंद्र बनेगा। और अभी मैं इसको ऐसी संपत्ति देने जा रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये समय प्राप्त स्थानम दुष्प्राप्य अमरैरपि, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ संपदा है वो मैं दूंगा इसको सूतल लोक में। और आगे आने वाले मनवंतर में यह मनु बनेगा, अरे इंद्र बनेगा। और मैं वहां ऐसा संपत्ति दे रहा हूं जहां आधी व्याधि दुख संपत्ति नहीं है, संकट नहीं है, और वह मेरी दृष्टि से वहां सब कुछ सुख बना रहेगा। फिर कहते हैं, महाराज इंद्रसेन आप सूतल लोक में जाइए और वहां चिंता मत कीजिए, मैं आपका गेट कीपर बनकर वहां आपके लोक की रक्षा करूंगा। सब जगह आप मेरा दर्शन करेंगे। रक्षिष्ये सर्वतो हम तम सानुगम सब परिच्छदम, मैं आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा सब तरह से करता रहूंगा। सदा सन्निहितम वीर तत्र माम दक्षते भवान। यह देख करके प्रहलाद महाराज तो एकदम चकित हो गए। और इधर बलि महाराज प्रणाम करते हैं। जो ही भगवान ऐसा कह करके बलि महाराज के ऊपर स्पर्श किए थे, ही उनका बंधन खुल गया। जो सर्प का बंधन गरुड़ जी लगाए थे वरुण पास, वो खुल गया। और बलि महाराज हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपको पहचाना भी नहीं, अनजान में आपके चरणों में प्रणाम करना चाहा, भगवान जानकर नहीं किया, लेकिन हमारी चेष्टा को देखकर आप प्रसन्न हो गए। वास्तव में मैं आपके चरणों के प्रति भक्ति नहीं कर पाया, मैं तो केवल आपकी भक्ति करने का केवल प्रयास किया और इस प्रयास से आप मुझ पर इतनी बड़ी कृपा किए। इस तरह से बलि महाराज बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नेमम विरिंचो लभते प्रसादम, हे प्रभु ऐसा प्रसाद तो ब्रह्मा को भी नहीं मिला है, न श्री न लक्ष्मी को ऐसी कृपा मिला, न शिव को मिला। हम असुर लोग कौन ऐसा काम किए कि आप हमारा दुर्गपाल हो गए, गेट कीपर हो गए। यन्नो सुराणा मसी दुर्ग पालो विश्वा विबंदई रिबंदांग्री, जिनके चरणों की आराधना लोकाध्यक्ष लोग करते हैं, शिव ब्रह्मा इंद्र आदि जिनके चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हमारे गेट कीपर हो गए। अद्भुत आश्चर्य हो गया। प्रहलाद महाराज भी इस तरह बोल रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे बेटा प्रहलाद, बलि को ले जाओ, सूतल लोक में लेकर जाओ, मेरी आज्ञा है, आप वहां ले जाकर सुख पूर्वक रहो। तो बार बार भगवान की परिक्रमा करके प्रहलाद महाराज बलि महाराज भगवान के चरणों में झुक करके दंडवत करके उनकी आज्ञा से सूतल लोक में चले गए। इसके बाद भगवान शुक्राचार्य जी से बोलते हैं। जब बलि महाराज प्रहलाद महाराज चले गए, देवता लोग वहां उपस्थित हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि सब हैं, तब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन संतनु शिष्य से कर्म छिद्रम वितन्वत, आपका शिष्य संवा समेत जग कर रहा था, बीच में मैं उपस्थित होकर खड़मंजिल कर दिया, बाधा डाल दिया, आप अपने शिष्य के कर्म को पूरा कर दीजिए, सौ अश्वमेध जग पूरा कर दीजिए, ताकि यह स्वर्ग के पद के लिए क्वालिफाइड हो जाए। आगे आने वाले मनवंतर में इंद्र बनेगा, सब जग पूरा करना है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, जजमान चला गया और अब मैं जग कैसे पूरा करूंगा। तो कहते हैं, तत्त कर्म सुबह सम्यम ब्रह्म दिष्टम समम भवेत, ब्राह्मण में इतना तेज है कि उनके दृष्टि से सब कुछ पूरा हो जाता है, आप अकेले पूरा कर दीजिए। तब शुक्राचार्य जी देखिए कहते हैं, उस समय तो लगा कि शुक्राचार्य जी वैष्णव नहीं है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब शुक्राचार्य का वाक्य सुनिए। कह रहे, कुतस्तत कर्म वैषम्यम जस्य कर्मेश्वरो भवान, जिस जग में आप सारे कर्मों के अध्यक्ष स्वामी उपस्थित होकर यज्ञेशो यज्ञ पुरुष सर्वभावेन पूजित, सभी तरह से पूजित होकर के आपने हमारे शिष्य के दिए हुए दान को संतुष्ट होकर ले लिए, इसके बाद भी कमी रह गई। जिस यज्ञ में किसी प्रकार की कमी हो उस कमी को आपका नाम पूरा कर देता है। मंत्रतः स्तंत्रतः छिद्रम देश कालार वस्तुन सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र की कमी, तंत्र की कमी, देश की कमी, काल की कमी, ब्राह्मण की कमी, यजमान की कमी, सारा कमी आपका नाम पूरा करता है कीर्तन। और फिर आप जहां उपस्थित हैं उसमें कमी रह गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अर्थात हे प्रभु कोई कमी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं करूंगा। तथापि बदतो भूमन करिष्या में अनुशासनम, मैं आपकी आज्ञा अवश्य पालन करूंगा। क्यों? कि यश परम पुनसाम यत तवाज्ञा अनुपालनम, जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करे। जीव का सबसे बड़ा श्रेयस्कर कल्याणमय कर्तव्य यही है कि आपकी आज्ञा का पालन करे। इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा अवश्य पालन करूंगा। जग में कमी नहीं है, लेकिन मुझे आप आदेश दिए इसलिए मैं पालन करूंगा। यह देखिए शुक्राचार्य की वैष्णवता। इसके बाद शुक्राचार्य यज्ञ को पूरा किए और वहां उपस्थित सारे देवता उसी स्थान पर भगवान वामन देव को उपेंद्र पद पर, तीनों लोगों के अधीश्वर मनवंतरावतार के पद पर स्थापित किए और एक सुंदर विमान के साथ उनको सम्मान पूर्वक अभिषेक किया गया। अभिषेक करके विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गए, क्योंकि यज्ञ दूसरे जगह हो रहा था। फिर वहां से लेकर चले गए और भगवान इस प्रकार उस संपदा को लेकर के इंद्र को दे दिए। और वहां प्रजापति ब्रह्मा, देवर्षि नारद, दक्ष, भृगु, अंगिरा, कुमार, सभी कश्यप आदि सभी भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। और जितने ऋषि मुनि हैं सभी अदिति जी की प्रशंसा करते हैं। धन्य हो अदिति, तुम प्रभु को अपना पुत्र बना ली। और बड़े ही सरल भाव से प्रभु ने त्रिलोकी को लौटा दिया इंद्र को। तो सब लोग प्रशंसा करते हुए भगवान के गुणों को गाते हुए अपने अपने लोक में चले गए। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, पारम महिमनम उरुविक्रमतो गुणान यह पार्थिवानी विषमे सर अजान सिमर्त्य किम जाय मान उत्जात उपैति मर्त इत्याह मंत्र दिग्विश पुरुषस्य जस्य। कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्र तत्वेता वशिष्ठ आदि कहते हैं कि पृथ्वी के एक एक कण को, धूल कण को भले गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की महिमा को नहीं गिना जा सकता। इतने महान भगवान हैं। भगवान के गुणों का वर्णन कितना हो किया जाए कम है। इस प्रकार कहकर अंत में फलश्रुति कहते हैं। इस कथा को सुनने का क्या फल है? तो कहते हैं, यह इदम देव देवस्य हरेर अद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम श्रीणवानी श्रीणवन याति परम गति। कहते अवतारानुचरितम श्रीणवन याति परम गतिम, जो इस प्रकार भगवान हरि के अद्भुत चरित्र को सुनता है, इस वामन देव के अवतार की कथा को जो सुनता है, वो भगवत धाम वापस चला जाता है। श्रवण याति परम गति, केवल कथा सुनने वाला भगवत धाम चला जाता है। अक्रियमारे कर्मणिदम दैवे पित्रोथ मानुषे जत यत्रानुकृते तत्तेषां सुकृतम विदुः। इस प्रकार यह लीला, यह कथा किसी काम में, पितरों के तर्पण में, देवताओं की आराधना में, अथवा मनुष्यों के कार्य में भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्यों का उत्सव होता है विवाह शादी या कोई फेस्टिवल, तो वहां भी इस वामन देव की कथा को कहना चाहिए। तो यह किसी भी उत्सव में, सामाजिक उत्सव में या दैविक उत्सव में, पितरों के तर्पण आदि में, कहीं भी इस कथा मंगलमयी कथा को कहने से मंगल होता है निश्चित रूप से। तो इस प्रकार अति संक्षेप में मैं 9 अध्याय को पूरा किया। यह है भगवान वामन देव की अद्भुत कथा। तो भगवान वामन देव आज के तिथि को अवतार लेकर जगत का कल्याण किए, बलि को इंद्र को त्रिलोकी का राज दिए, बलि को अपनी कृपा दिए और हम लोगों को गंगा दिए। तो भगवान का यह अद्भुत अवतार है, निश्चित रूप से इसका स्मरण करना चाहिए। जो भगवान के इस अवतार और इस कर्म का स्मरण करता है वो भगवत धाम जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्यना, नहीं आता है मेरे पास आता है। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है वो भगवत धाम जाता है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। यद्यपि थोड़ा सा विलंब हुआ लेकिन सभी कथा को संक्षेप में कहना पड़ा। हरे कृष्ण।